الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شیخ محسن قبول ہو؟
قبول حق ہو.
شاباش، ایک زحمت کرو، اوپر چھت پر جا کر اذان دے دو.
برات علی کہاں ہے؟
وہ گھر چلا گیا ہے، اس کو جانے دو، دیر ہو گئی، جلدی کرو. سید الشہداء اس کا اجر دیں گے، تم جاؤ. نماز جماعت پر دھیان دو، مستحب اعمال کو بعد میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، جاؤ.
سلام احمد علی صاحب، سردی سے میرے دانت آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئے، بھائی یہ کیا حالت ہے؟
صدر اسلام کے دور میں گیزر نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی سختی برداشت کریں، شاید کوئی صاحب جواہر اس مدرسے سے فارغ ہو کر نکلے. جائیے جائیے.
جی.
ارے مہدی میاں، مہدی میاں.
جی.
برات علی کی کوئی اطلاع ملی؟
یہاں نہیں ہے، یقیناً گھر گیا ہوگا نہانے کے لیے.
جائیے جائیے جائیے. السلام علیکم.
علیکم السلام احمد علی صاحب، کہاں؟ آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے؟
نہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کو حل کر کے آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتا ہوں.
انشاءاللہ خیر تو ہے؟
انشاءاللہ سب خیر ہے، اجازت دیجیے ابھی آ جائیے.
مل گیا وہ؟
تم دیکھ رہی ہو، وہ میرے ساتھ نہیں آیا ہے، وہ مل نہیں سکا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا.
شاید وہ روٹی لینے گیا ہو.
میں روٹی کی دکان پر بھی گیا ہوں، کئی اور جگہوں پر بھی گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے.
میں بیچاری ہو گئی، کتنی بار میں نے کہا بچے پر زبردستی مت کرو.
کیا میں نے اس بچے سے زبردستی کی ہے؟ اتنی خفت و خواری کے بعد بھی چار دفعہ بڑبڑایا تو زبردستی ہو گئی؟ کیا میں نے اس سے بات بھی کی ہے؟
یہ لڑکا حاضرہ سے پیار کرتا ہے، ان کے گھر سے باہر نکلتے ہی کہتے ہو کہ اس کو دل سے نکال دو، کیا یہ ہونے والی بات ہے؟
جو بھی عاشق ہوگا اس کو ایسا ہی ہونا ہوگا.
خود کو اس بچے کی جگہ پر رکھ کے دیکھو احمد علی.
کیا تمہیں خود یاد نہیں آتا تمہارے ابا نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا؟ اگر میری ماں کی خواہش اور زور نہ ہوتا تو میں تمہارے گھر واپس آ جاتا، یہ بات تو تمہیں یاد رکھنی چاہیے نا.
تم یوں ہی کہانی گھڑتے رہو، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں جانوں گی اور تم.
تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر اس بچے نے میری بات نہیں مانی تو میں خود اس کی خبر لوں گا، نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی، تم بے فکر رہو. اب تم دیکھنا.
محمد حسین اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے.
میں جاگ رہا ہوں.
کل رات تمہیں صحیح نیند نہیں آئی کیا؟ بار بار چونک رہے تھے.
کوئی بات نہیں ہے.
کس بات پر ابا حضور کے ساتھ تمہاری بحث ہوئی ہے؟
کوئی بات نہیں ہے مائدہ، ضد مت کرو. وہ پلاس مجھے دے دو.
یہ لے.
پلاس.
تم سے اگر نہیں ہوتا تو میں کر دوں.
اگر تم کام کے ہوتے تو کیا بات تھی، جاؤ دیکھو پانی گرم ہوا کہ نہیں.
گرم ہو گیا؟
جی.
تمہارا شکریہ، میرے خیال سے وہ جل گیا، خدا تمہیں اجر دے.
اب تم لقمہ مت دو.
لقمہ کیا ہے بھائی، تم اتنا غلط کیوں سوچتے ہو؟
तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बिलाखिर मुद्दतों के बाद ये गीजर चल ही पड़ा। मोहम्मद हुसैन, हमारे बरात अली को कहीं देखा है?
गुम हो गया क्या?
गुम नहीं हुआ, भाग गया है।
भाग गया है?
यकीन करो, इस 10 साल के अरसे में उसने सिर्फ उस वक्त यहाँ अजान नहीं दी जब उसे निमोनिया हुआ था। मजमूई तौर पर वो मदरसे में सोया है या घर में, एक रात भी बाहर नहीं सोया है। कल रात उसने मोटरसाइकिल निकाली और पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। वाह हो मुझ पर कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की।
बरात अली, बरात अली, बरात अली, ये सोने की जगह है, जरा उठो तो। क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है?
सलाम।
तुम्हारी नींद भी कितनी गहरी है।
क्या गहरी नींद बुरी होती है?
गहरी नींद दिमाग के हल्का होने की अलामत है।
मैं कब से यहाँ पर सो रहा हूँ?
मुझे क्या पता, तुम सुबह सवेरे आए और यहाँ लंबे पड़ गए। मैंने सोचा तुम राज और नयाज कर रहे हो।
माफ कीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूँ।
मौला से शर्मिंदा हो ना, उठो उठो, मैं झाड़ू लगाना चाहता हूँ।
अब कोई और जगह नहीं मिली जहाँ पर आप झाड़ू लगाएं? कोई नहीं मिला जिसके लिए आप कब्र खोदना चाहें?
मैं कब्र जिंदों के लिए खोदता हूँ, मुर्दों के लिए नहीं। कब्र इबरत हासिल करने की जगह है, तदफीन की नहीं। मुर्दे को इबरत की क्या जरूरत?
मुस्तफ़ा मियाँ, तुम्हारी चाय तैयार है?
जी हाँ जी साहब।
तुम क्या कर रहे हो?
ये डॉक्टर ने मुझे दिया है, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। जब मैं बच्चा था तो एक के बारे में लोग कहते थे कि वो जिन है, अगर उसकी आंखों में देखोगे तो बदबख्त हो जाओगे।
अल्लाह अकबर।
मैंने भी जिद में आकर उसकी आंखों में घूर कर देखा। जिस दिन मेरी बीवी मर गई, मैं बदबख्ती में मुब्तला हो गया। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है हाजी साहब।
तुम्हारा दिल ही टूटा है, पत्थर का तो नहीं बना ना। इंशाल्लाह तुम जिंदा रहोगे।
जब मेरी बीवी की मौत हुई, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं एक जिंदा लाश में तब्दील हो गया।
आंसू अच्छा है, लेकिन रेशम का कीड़ा जब सोचने लगता है दुनिया अपने आखिर को पहुंची है, तो लोग उस वक्त मुतवज्जे होते हैं कि वो तितली में तब्दील हो गया है।
मेरे लिए नहीं, जो सिर्फ मैयत दफन करता है।
अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम खुदा की हिकमत को नहीं मानते हो? तुम्हारी
मैं खुदा की हिकमत के आगे सरापा तस्लीम हूँ, लेकिन मेरी अक्ल इससे ज्यादा सोच समझ नहीं रखती।
जब तस्लीम हो जाओगे तो वो तुम्हारी अक्ल को भी परवान चढ़ाएगी।
वो मेरे आंसू तो निकाल दे, अक्ल के बारे में बाद में सोचा जाएगा।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हाथ ना जला लेना।
हाजी हबीब की बेटी भी यहाँ पर आई थी, मेरी तरह बेचारी के भी अपनी माँ के लिए आंसू नहीं निकले।
मुस्तफा मियाँ, तुमने उसके साथ सख्ती तो नहीं की ना?
अलबत्ता उसको कुछ बुरा भला कहा।
तुम्हारा क्या करूं मैं, खुदा ही जाने। तुम्हारी मेहरबानी, आपने लिए नहीं रखोगे?
मैं भी ले लूंगा।
फरमाइए।
सलाम।
फरमाइए, किससे काम है?
माफ़ कीजिएगा, आप हुदा अंसारी हैं?
हाँ, मैं हूँ।
माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे ही काम है।
किस सिलसिले में?
मैं सबा हूँ, निदाय शहर मार की रिपोर्टर। ये एक मकामी हफ्त रोज़ा है जो हमारे शहर में शाये होता है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता नहीं है?
किस बात का?
कि आप हमारे शहर के मारूफ तरीन बाशिंदों में शुमार होती हैं।
तुम्हें यकीन है जो मारूफ है वो मेरे वालिद हैं?
जी, इत्तेफाकन मैंने कई तफसीली मकाले हाजी हबीब अंसारी से मुतालिक लिखे हैं, और अब आपके बारे में एक मकाला तरतीब देना चाहती हूँ।
मेरे बारे में सबको पता है।
नहीं भाई, आपका काम बड़ी महारत का है। किसी को पता नहीं है कि अफ्रीका में कौन सा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है।
और बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है?
इजाजत दीजिए, आपने वो 2012 में कनाडा की सोशियोलॉजी एसोसिएशन के जेरे एहतमाम मुनाकिदा एडमिन हॉन कॉन्फ्रेंस में अवार्ड हासिल किया। आपकी तहकीकात का नतीजा भी कल्चर मैगजीन में शाये हुआ है। ईरान में भी उसका तर्जुमा हुआ है। इस वक्त भी आप कदीम और जदीद इंसानों की जोग्राफियाई और असरी गुनागुनी और पेचीदगियों के बारे में काम कर रही हैं, और इसी तरह इंसानों के आबाव अजदाद पर। आप केनिया गई ताकि दोबारा?
ये बातें कहाँ से पता की सबा?
सपीदा सबा हूँ, सब कुछ इंटरनेट पर है। आप हमारे शहर के बाशिंदों में वाहिद शख्स हैं जिसने 68,000 सफ़े से ज्यादा इंटरनेट पर।
सब चीजें इंटरनेट पे मिल जाती हैं।
अच्छी बात है, फिर हम इंटरव्यू के लिए कब?
मैंने ऐसा कहा क्या?
क्या आप वक्त नहीं देना चाहती?
हाँ, नहीं दूंगी।
अरे भाई, आपने तो ढेर सारे रसालों और मैगजीन को इंटरव्यू दिए हैं, आप अपने शहरियों को मौका नहीं देना चाहती?
कोई इरादा नहीं।
लेकिन क्यों?
कोई वजह नहीं।
हमारा रिसाला बहुत ही मोतबर है। मैं इस इंटरव्यू को छपने से पहले आपको दे दूंगी, आप खुद इसे एडिट कर लीजिएगा।
मैं नहीं चाहती।
लेकिन आखिर क्यों? ठीक है, अच्छी बात है, आपकी दलील वाजिब है, मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। और हाँ अंसारी साहिबा, और अगर आपकी राय तब्दील हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा।
जरूर।
बहुत शुक्रिया।
कौन है?
सलाम।
सलाम, अंदर आओ।
जहमत नहीं दूंगी, एक पैगाम देने आई हूँ, देकर चली जाऊंगी। आगा साहब ने कहा है कि जब भी आपको मौका मिले मदरसे चली जाएं।
क्या करूँ वहाँ जाकर?
दादा जान ने जब गुलशन आबाद की जमीनें आगा साहब को दे दी, आगा साहब ने उन्हें वक्फ कर दिया। आप और खाला जोहरा को वफ के निगरान के हैसियत से मुतारिफ कराया, वो आपको काम की रिपोर्ट देना चाहते हैं।
उनका शुक्रिया अदा करो, उनसे कहो मुझे दिलचस्पी नहीं।
नहीं हो सकता, दादा जान ने वसीयत की थी, आपको यकीनन मामलात का पता होना चाहिए।
मैं तुम्हें वकील बनाती हूँ, खुद मामला निपटाओ।
जिस तरह आप मुनासिब समझे।
उन्होंने तुम्हें भेजा है ताकि मैं तुमसे कहूँ अंदर आ जाओ। उनकी बात समझ में आ गई तो अंदर आ जाओ।
आपको और भी जरूरी काम होंगे।
अंदर आ जाओ, मैंने खाना बनाया है।
क्या खूब, आपको खाना बनाना भी आता है।
तो ध्यान रहे आगा साहब को पता ना चले कि हमने आपस में बातें नहीं की। रिश्तेदार की हैसियत से मेरा एक काम करोगी?
जानने वाले की हैसियत से जो काम कहेंगे कर दूंगी।
क्या तुम मुझे नेट कैफे ले जा सकती हो?
मोहम्मद हुसैन को कह दूंगी, वो नेट घर पे आके लगा देंगे।
ताकि कैफे तक भी तुम्हारे साथ ना जा सकूं।
ताकि आप जब भी जाएंगे घर पे नेट इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह आप किसी की मदद लेने के लिए मजबूर नहीं होंगी।
हेलो सबा साहिबा
जी,
मैं हुदा अंसारी हूँ।
जी बोलिए।
आपको एक तजवीज देना चाहती हूँ।
जी फरमाइए।
मैं इस शर्त पे मैगजीन को इंटरव्यू दूंगी कि आप मेरी बेटी का भी इंटरव्यू लें।
कोई नई बात है क्या?
सब कुछ तो नेट पे होता नहीं सबा साहिबा।
आपकी बेटी करती क्या है?
मेरी बेटी शहर के सबसे बड़े तामीराती प्रोजेक्ट की डायरेक्टर है।
अच्छा,
आप अपनी खुशी को कंट्रोल में रखें। उसका नंबर आपको SMS कर दूंगी। बस ये ना कहें कि मैंने कहा है।
जी
ठीक है जी, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
बरात अली साहब।
अरे सलाम हाजिरा खातून, तुम ठीक हो?
वालेकुम सलाम, शुक्रिया।
मेहरबानी, तुम यहाँ कब से हो?
बरात अली, तुम क्या करना चाहते हो? क्या यह हो सकता है कि जब मैं बात करूं तो तुम जमीन को नहीं मेरी तरफ देख के बात करो?
जब तुम्हारे वालिद आलिमुद्दीन को बेटी नहीं देना चाहते तो मैं क्या करूं?
इस बात का क्या मतलब है?
ये बात अकबर साहब से पूछो।
अकबर साहब से पूछूं? यानी तुम इतनी आसानी से पीछे हट गए?
नहीं, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ।
अगर तुम अपनी बात पर हो तो उसी वक्त क्यों नहीं जवाब दिया?
यानी मैं तुम्हारे वालिद के मुल्क
तो मुझे अपने पांव तले रौंद डालो।
मेरी क्या मजाल है? तुम्हारी जगह मेरे सर पर है।
जी लेकिन इस शर्त से पहले मेरे अब्बा हैं। फिर तुम नीचे की तरफ देखने लगे? बरात अली साहब, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ।
हाँ तो बोलो।
तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं?
इस सवाल का जवाब तो तुम खुद ही जानती हो।
मैंने कल रात से भूख हड़ताल कर रखी है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है।
देखो इसके बाद धरने पर मत बैठ जाना।
जब कभी मैं तुमसे मजाक करती हूँ तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। अभी जब मैं संजीदा हूँ तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है।
हाजरा खातून, हाजरा खातून, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कहती?
अफसोस कि मैं देखची लेने आई थी।
भाई मैं कहता हूँ मेरी खातिर भूख हड़ताल मत करो, मुश्किल में पड़ जाओगी तुम।
अब तुम बताओ तुम मेरी खातिर क्या कर रहे हो?
मैं?
हाँ।
ये आपस की बात है, मैं आज भाग के आया हूँ।
भाग कर आए हो?
हाँ।
अच्छा भाग कर आए हो, तो फिर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?
यहाँ?
जी हाँ यहीं पर।
मैंने 2 हफ्ते पहले ये देखची ली थी टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए, कहीं रख दी थी।
कोई बात नहीं, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम।
कुछ पता है तुम कहाँ हो? तुम्हारे अब्बू ने हर जगह छान मारा है।
मैं थोड़ा तनहाई में रहकर सोचना चाहता था।
क्या तुम यहाँ नहीं सोच सकते थे? यहाँ इतनी सारी जगह खाली पड़ी हुई है।
इसकी कोई जरूरत नहीं थी अम्मी जान।
मेहरबानी,
आपकी इजाजत से अब मैं चलती हूँ।
ठीक है, थोड़ी सी कुदरत पैदा हो गई है, लेकिन अपनी माँ से कह दो कि इतनी जल्दी देगची मांगने की क्या जरूरत है हमसे।
नहीं अम्मी, पेस्ट बनाना चाहती थी। इस बात का कल रात के मसले से कोई ताल्लुक
नहीं। मजाक कर रही हैं।
जी मैं जानती हूँ, इजाजत दे।
हाँ
खुदा हाफिज़।
तुम रहने दो, मैं लेके चलता हूँ।
नहीं शुक्रिया,
सलामत रहो। सलाम बोल देना। खुदा हाफिज। अम्मी जान ये कैसा मजाक था जो आप कर रही थी?
आओ चलो खाना खा लेते।
एक मिनट ठहरे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर हो सकता है मेरे सामान उठा कर ले आए, मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, मिट्टी और धूल से अटा हुआ हूँ।
अरे यहाँ तक आ गए हो, क्या नहाना नहीं चाहोगे?
नहीं मैं चाहता हूँ अपनी किताबों पर नजर डालूं, 2-3 दिनों से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है।
ठीक है रुको, मैं तुम्हारा सामान ले आती हूँ।
अब ये बच्चा ऐसी परेशानी की सूरत हाल से दो चार है, तुम उसके साथ क्यों इस तरह का सलूक करते हो? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बच्चे को अपने घर आकर नहाने की भी जरूरत नहीं हो रही। कल को उसको उल्मा का लिबास पहनना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, पर उसका बाप उसके साथ बच्चों की तरह सलूक करता है। ये दस्तरखान पर रख दो।
दो मिनट के बाद तुम्हें सोना है, इतनी ज्यादा लस्सी मत पियो। वो अंगूर का तुर्श अरक मुझे दो, लाओ।
ये लीजिए।
बड़ी मेहरबानी। बेटे जरा इसकी बोतल जाकर सहन से ले आओ। उठो, शाबाश।
बेटे तुम मत जाओ, उसकी बोतल भारी है, मैं खुद जाकर ले आती हूँ।
तुम्हें पता है मैंने फैसला किया है कल आगा साहब के पास जाऊंगा और जाकर कहूंगा कि मैं प्यार करने लगा हूं। क्या प्यार करना गुनाह है? पैगंबर अकरम खुद भी हजरत खदीजा को चाहते थे। अब मैं इस बारे में क्या कहूं? तुम इस बात को बेहतर समझ सकती हो। बताओ
कौन है? अम्मी बरात अली, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या तुम मदरसे नहीं गए?
मैं वहां गया था लेकिन मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा अंदर जाकर अब्बू ने ऐसी वैसी बातें तो नहीं करती, इसलिए मैं वापस आ गया।
नहीं भाई, इत्तेफाकन तुम्हारे अब्बू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा है।
कुछ नहीं कहा है?
नहीं।
आपने खाना तैयार किया है? मुझे बहुत भूख लग रही है, अंदर आ जाऊं खाना खाने के लिए?
जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारा खाना ले आती हूं।
आप हमसे नाराज है ना?
मैं तो भूल गई हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अब्बू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।
यानी वो इस हद तक नाराज?
उनका गुस्सा करना सही है, वो सोचते थे तुम दीनी लिबास पहनोगे और काम के आदमी बनोगे। तुम्हें पता है वो कई बरसों से तुम्हें अबा अमामे में देखना चाहते थे। तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, तुम्हारा बिस्तर भी बिछा देती हूँ, सो जाओ।
सहन में?
हाँ ना।
बरात अली, बरात बेटे।
जी बोलिए, सब खैरियत तो है?
नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ।
नमाज का वक्त है?
नमाज के लिए अभी बहुत वक्त है। बरात अली, दो तीन बातें मेरे जहन में आई हैं, मैंने सोचा तुमसे बात करूं कि तुम्हारे साथ क्या मुश्किल है, क्या मसला है। बेटे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। बहरहाल मैं तुम्हारे मसले को हल करने में कामयाब होना चाहता हूँ, अगर तुम पसंद करो तो।
आपकी मेहरबानी, फरमाइए।
रात को मैं उलझन का शिकार था, मैं अकेले में बैठा और बहुत देर तक इस मुतालिक सोचता रहा। मैंने देखा बेटा बरात अली, लोगों के पास इतनी मुश्किल होती है। बहुत से लोग हैं जो मुश्किलों में हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम हल ना कर सकें। मैं बताता हूँ कि क्या है।
फरमाइए, आपकी मेहरबानी।
शाबाश शाबाश बरात अली, तुम सुबह उठ के गौसल खाने में जाओगे, साफ सुथरे होकर मदरसे चले जाओगे, अपने काम अंजाम दोगे। जब तुम अपने काम निपटा चुकोगे, हाजी साहब की खिदमत में जानुए अदब तह करोगे और अपने सर पर अमामा लगा लोगे।
तो हाजरा का क्या होगा बजान?
अरे तो मुझे बात तो पूरी करने दो, बीच बीच में हाजरा हाजरा करे जा रहे हो। मेरी बात तो पूरी होने दो, क्या तरीका है ये? जब तुम अमामा अपने सर पर लगा लोगे तो बाहर आना और अपने सर से अमामा उतार देना।
उसके बाद क्या होगा?
क्या क्या होगा? तुम एक मिठाई का डब्बा खरीदोगे, उस पर फूल चिपकाओगे और जाकर अकबर गाफिल के घर की बेल बजा दोगे। तुम कहोगे तुम्हारी तमाम बेहुदा शर्तें मेरी सर आंखों पर, मैं उनको मान लेता हूँ और मेरी तरफ से जो कुछ तुम कहना चाहो कह देना, तुम्हें इजाजत है पूरी, कह देना। हाजरा खातून की खातिर मैं अपने बाप के सामने सीना तान के खड़ा हूँ, जो कि मुखालिफत कर रहे थे उन्होंने भी बात मान ली है, सिर्फ हाजरा खातून की खातिर। ठीक है?
अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
सुनो, बिल्कुल सुनो मेरी बात, सुनो। उसके बाद तुम जाओगे रजिस्ट्रार के ऑफिस और अक्द कर लेना। जब अक्द कर लोगे तो मैं वहां तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे सर पर अमामा रखूंगा, अबा को तुम्हारे कंधे पर रख दूंगा, तुम्हारे पेशानी को चूमूंगा, फिर तुम देखोगे कि अकबर का मुंह खुला होगा, वो हैरान होकर हमें देख रहा होगा। देखने दो उसको, वो बेख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। मसला खत्म, हो गई शादी।
यही?
हाँ यही।
यानी मैं झूठ बोलूं?
नहीं, तुम इन बातों की लताफत को नहीं समझ रहे हो। यानी तुमने अपने प्यारे अब्बा की फरमाइशात के मोती को जमीन पर गिरकर टूटने नहीं दिया। झूठ नहीं है
अब्बा जान, मैं लोगों के दीन और दुनिया का अमानतदार हूँ। क्या खुदा खुश होगा कि मैं झूठ बोलूं?
दूसरा रास्ता, क्या इस वक्त तुम्हारी यही राय है? दूसरा रास्ता
फरमाइए।
तुम अमामा अपने सर पर रखोगे, जाकर एक शरीफ असली हस्ब नस्ब के हामिल बुनियादी हैसियत रखने वाले खानदान को ढूंढ निकालोगे और उनकी प्यारी बेटी को हम बहू बना लेंगे। इस तरह तुम्हारा दीन भी कामिल हो जाएगा, मुआशरे को तुमसे फायदा भी ज्यादा पहुंचेगा और वही काम होगा जो मैं चाहता हूँ। बस
अहमद अली साहब, एक मिनट इधर आ जाओ।
सोच लो तुम, पहला रास्ता अच्छा है। जी हुक्म करो।
अहमद अली, इस लड़के के दिल में हाजरा है, उनके दरमियान अगर रुकावट बनोगे तो उनके दिल में कीना रह जाएगा।
आप इजाजत दीजिए, तुम्हारे दिल में रह जाएगा? क्या तुम खुदा और हाजरा के दरमियान हाजरा का ही इंतखाब करोगे?
खुदा के पास खुद इतने सारे दीनी तलबा हैं जो उसकी राह की तरफ हिदायत कर सकते हैं। अब अगर एक बार बारात अली कम हो जाए तो कायनात पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मुझे खुदा की कायनात से क्या काम है भाई? इसने एक उम्र तक इमाम जमाना का वजीफा लिया है, खा लिया तो जाकर गाय की तरह 25-30 किलो दूध देने के बजाय कटोरे को ठोकर मारकर लंबा पड़ जाए।
आप फालतू बातें क्यों कर रहे हैं?
मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने ये पूरे बाल मदरसे में सफेद किए हैं, मुझे इस बारे में पता है। मैंने खुदा की बंदगी की है, उसके बंदों की खिदमत की है, क्या वहाँ से मेरे हिस्से में एक तालिबे इल्म का निकलना मेरा हक नहीं है?
तुम्हारी नीयत साफ नहीं है अहमद अली, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, यही वजह है कि यहाँ तक नौबत आ गई।
अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने कहा था कि तुम दीनी तालिबे इल्म बनो, इसलिए मसला पेश आया है? गलती मेरी थी, गलती मेरी जानिब से है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, क्या तुम्हारा अपना दिल नहीं चाहता था कि तुम तालिबे इल्म बनो?
गलती तुम्हारी थी ना।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
कबूल हो शेख मोहसिन?
कबूल हक हो।
एक जहमत करो, जरा जाकर अजान भी दे दो।
अब क्या हो गया अहमद अली साहब?
हुआ कुछ नहीं, अजान में देर हो जाए तो आगा साहब नाराज हो जाते हैं। जाओ।
बरात अली कहाँ है?
बरात अली से सरोकार मत रखो, वो कहीं मर खप गया है। जाओ जी, जाओ।
भागने वाला तालिबे इल्म ना पोख्ता होता है, हो सकता है कि अमामा पहनते वक्त ना आए।
शेख मोहसिन, आप तवज्जो दीजिए अजान देने में, मैं जानूं, बरात अली जाने और वो तकरीब, जाइए, चलिए।
जी अच्छा।
हाजी अहमद अली।
क्या है?
हाजी अहमद अली।
हाँ,
ये हाजी साहब ने रात के खाने के लिए दिया है, मुझे लगता है कम पड़ जाएगा, एक दो का बंदोबस्त आप कर लेंगे?
कहते हैं कि अपने पेट को गजा से खाली रखो ताकि इसमें मारिफत की रोशनी देख सको, दो मुर्ग कम खाएंगे तो आपकी मारिफत में इजाफा हो जाएगा।
सख्ती ना करें हाजी अहमद अली, एक रात हजार रातों के बराबर तो नहीं।
बेटा मुस्लिम
जी,
बरात अली को तो कहीं नहीं देखा?
एक दो दिन से कोई इत्तला तो नहीं है, कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जाओ तुम। हेलो, नहीं नहीं मिला है वो, अब तो यही होगा ना, जब उसके सामने तुम मुझे कोसती हो तो टॉर्च लेकर उसको ढूंढना पड़ेगा, अब तो ऐसा ही होगा।
मुस्तफा साहब, आप तो हमारे उस्ताद के दोस्त हैं, मेरी सिफारिश कर दीजिए ना।
इसराइल से मेरी ज्यादा दोस्ती है, कहो तो सिफारिश कर दूं।
हमारे उस्ताद बेजा किसी के साथ उठते बैठते नहीं है, कम से कम मशवरा तो दीजिए, मैं बीच में फंस चुका हूँ, क्या करूँ?
एक दिन एक बच्चे ने घर में बहुत शोर हंगामा मचा रखा था, माँ ने उसकी शिकायत उसके बाप से कर दी, बाप ने भी कमर से पेटी उतारी और उसकी पिटाई शुरू कर दी। क्योंकि बच्चे को भागने का रास्ता नहीं मिला तो वो जाके बाप के सीने से लिपट गया, वो पेटी बाप के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई।
यानी ये कि मैं अपने अब्बा की बात पर अमल करूं?
खुदा की हिकमत को देखो, सब आते हैं उलमा के पास ये पता करने कि क्या करें क्या ना करें। तुमने भी सुबह सवेरे मुझे कहानी बयान करने पर लगा दिया।
मुस्तफा साहब ये बताइए मैं क्या करूं अब?
फरार कर जाओ।
फरार करूं?
खुदा की जानिब फरार।
यानी मैं लिबास पहनूं?
मैंने कहा खुदा की जानिब फरार सही है, मुझे नहीं पता कि खुदा की नजर में तुम्हें लिबास पहनना चाहिए या प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाओ।
खुदा आपका भला करे मुस्तफा साहब, भला करे।
मैंने तुम्हारे उस्ताद से एक बात सीखी है, खुदा कभी किसी के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता जब तक उसमें उनको हटाने की हिम्मत ना हो।
देखिए अहमद अली साहब, ये भी ठीक हो गया, अब आप मेरा पीछा छोड़ेंगे?
ठीक है ठीक है
जी, बेफिक्र रहे,
खुदा तुम्हारा भला करे। मोहम्मद हुसैन, वो बरात अली को तो नहीं देखा तुमने?
नहीं, क्यों ये लड़का भागा हुआ है?
ये अपनी आखिरत को नजर आतिश कर लेगा, ये हो जाएगा उसी शेख सनान की तरह, अगर नहीं हुआ देख लेना।
भाई बरात अली का शेख सनान से क्या ताल्लुक है? क्या बात हो गई आप दोनों के दरमियान?
मोहम्मद हुसैन, क्या बात होनी थी, शर की बात, बदनसीबी की बात, उस फसल को आग लग गई जिसको मैंने बोया था। अगर वो मर जाता तो अच्छा था, ये दिन तो देखने को ना मिलता।
अहमद अली साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं खुद जाकर उसको तलाश करके ले आता हूँ।
उसको ढूंढने में पेट्रोल की दो टंकियां खत्म हो गई, ये पता नहीं कहाँ है। तुम जाओ, उसके कान पकड़ कर खींच कर यहाँ लाओ, जाओ।
ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं जाकर देखता हूँ कि उसकी परेशानी क्या है।
उसकी परेशानी कुछ भी नहीं है, तुम उसके कान पकड़ कर कह दो कि जाकर सही काम अंजाम दे, सही काम करने में तकलीफ होती है।
अच्छा, सही क्या है?
मोहम्मद हुसैन, मुझ में हिम्मत नहीं है, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम जाकर उसके कान पकड़ कर यहाँ ले आओ, मैं उसको रास्ते पर ले आऊंगा। जाओ, मेरी हालत ठीक नहीं है। देख लो कहीं मिल जाए तो अच्छा है, तो कुछ ध्यान से जाना, उसको लेकर ही आना इस बार। खुदा हाफिज।
मोहम्मद हुसैन, ठहरो 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 ठहरो।
अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं अभी तुम्हें टक्कर मार देता यार।
मेरे अब्बू क्या कह रहे थे?
अरे तुम दोनों बाप बेटों को क्या हो गया है आज?
भाई बताओ ना क्या कह रहे थे वो?
कह रहे थे बरात अली ने अपना दीन बेच दिया है। तुम्हें बैठ के सोचना चाहिए, तुम्हें एक बुनियादी सोच रखनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए और सोच के ठीक करना चाहिए।
अपने को मेरी जगह पर रखकर देखो, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है जो मैंने किया, मुझे तलबा ही रहना पसंद है, मुझे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है।
क्या अकबर साहब ने यह कहा है कि तुम दीनी तालीम छोड़ दो?
फिर अब्बू ने तुमसे क्या कहा?
अरे अरे अरे, वाकई ये बात कही?
मोहम्मद हुसैन, तुम बहुत ही बदकमाश हो।
अच्छा, अब तुम क्या करना चाहते हो?
मुझे क्या पता,
मैं कहता हूँ चलो अब्बा हुजूर को भी बता।
अरे मैं कह रहा हूँ तुम किसी से मत कहना, और तुम लौटकर अब्बा जान से कह दोगे, बात हमारे बीच में रहनी चाहिए ना।
ठीक है।
मोहम्मद हुसैन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये कह रहा था कि क्या हुआ जो तुमने दीनी तालीम छोड़ दी?
मैं बगैर दीनी लिबास के ही ठीक हूँ
यार। बताओ ना, मैं तुमसे संजीदा सवाल कर रहा हूँ, मेरी रहनुमाई करो, मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ।
मुझे पसंद नहीं था, मैंने गुनाह तो नहीं किया ना?
लो मुझे दो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी दीनी तालीम जारी नहीं रखना चाहते हो? बोलो, क्या वाकई नहीं जारी रखना चाहते हो? बरात अली, मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे कोई और काम पसंद था। तुम क्या करना चाहते हो?
मैं पैसों की खातिर दीनी तालीम हासिल करने नहीं आया हूँ।
लेकिन कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसे बेकार तो नहीं रह सकते ना।
यार मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो, फालतू की बातें कर रहे हो।
तुम ऐसे लड़के से जिसकी चार नस्लें मजहबी थी, उससे तुम क्या जानना चाह रहे हो? मेरा मसला तुमसे अलग है, तुम में ये जज्बा है कि उन जैसे बन जाओ।
अगर मैं उन जैसा बनना चाहूँ तो?
तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
मेरा मसला यही है, बिल्कुल यही है। देखो, मैं मुकम्मल तौर पर इस बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मैं लिबास पहनूं और कई साल बाद पछताऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, यह तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेरी सही रहनुमाई करो।
अभी जहां कह रहे हो, जरा मदद करो, इस जैक को गाड़ी से निकालना है। आओ ना।
मैंने यहाँ आगा साहब इतनी जहमत उठाई है, मैंने अपने बाल सफेद किए हैं, क्या इन तमाम नौजवानों के बीच एक तालिबे इल्म मेरे हिस्से में नहीं आ सकता?
हिस्सा क्या है अहमद अली साहब, हिस्सा क्या है?
आपको तो मालूम है मैंने कितनी उम्मीद वाबस्ता कर रखी थी इस लड़के से, मैंने कितनी तकलीफ उठाई है।
जिस कैफियत से बारात अली दो चार है, आप यकीन कर लें इसमें भलाई ही है। अगर वो पहला कदम मजबूती से ना उठाए तो इस बात का इम्कान है कि उम्र के आखिर तक उसका ईमान लड़खड़ाता रहे।
ईमान की बात क्या है आगा साहब, लड़का अपना दीन फरोख्त कर रहा है, आपको ईमान की फिक्र लगी है?
अच्छा तुम मुझे ये बता दो कि असल मसला क्या है।
मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे उसका मसला क्या है, मुझे नहीं मालूम। शायद मैंने कोई उसको नाजायज लुकमा खिलाया था जिसका नतीजा ये हुआ है, बस मुझे यही परेशानी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
आगा साहब कहीं वो तकरीब में शिरकत के लिए ना आया तो क्या होगा?
ठीक है ना आए,
यानी आप उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे ताकि वो अमामा ना पहने?
दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको इंसान अंजाम दे सकता है और उनका फायदा लोगों को पहुंचता है, शायद शायद उसकी मसलहत इसी में है।
हमें क्या मालूम क्या मसलहत है।
बड़बड़ाओ नहीं अहमद अली साहब, बड़बड़ाओ नहीं।
तुम किसी सबा को जानते हो?
नहीं, कौन है?
रिपोर्टर हैं, फोन किया था कि वो मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कह रही थी कि मेरा नंबर तुमसे लिया है।
मैं कह रहा हूँ नहीं जानता हूँ, तुम कह रही हो मुझसे लिया है।
तो फिर मेरा नंबर कहाँ से मिला?
मुझे नहीं मालूम। बहरहाल वो क्या कह रही थी?
कुछ नहीं, कह रही थी कि हम एक पढ़ी लिखी कामयाब तालीम याफ्ता तख्लीकी सलाहियत की हामिल नौजवान खातून का इंटरव्यू करना चाहते हैं।
ओहो, शाबाश।
हाँ, उन्होंने कहा कि आप शहर की सबसे बड़ी तामीराती मंसूबे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
हाँ, इसलिए कि तुम्हारा काम अच्छा है।
फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक कामयाब शख्स और पढ़े लिखे तख्लीकी सलाहियत के हामिल नौजवान से इंटरव्यू करें।
इस काम की तरतीब देने वाली कौन है? तुम। डायरेक्टर कौन है? तुम। मैं कौन हूँ? एक निचली सतह का मामूली सा मुलाजिम।
मैं तो वहां सिर्फ दस्तखत करने वाली मशीन हूँ। ये लो।
अब तुमने लुकमा दिया?
नहीं, किसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है जो तुम पर एतराज करे।
लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल लुकमे की तरह लग रही थी।
अरे मैंने तो मजाक किया था, बद अखलाक कहीं के।
अब तुमने कब टाइम दिया है?
तय पाया है कि तुम्हें फोन करे और तुम्हारा इंटरव्यू ले।
तुम सच कह रही हो? मैदा तुमने क्यों इस तरह किया? तुम खुद उससे बात कर लेती, अब जरा खुद एतमादी हासिल करनी चाहिए। तुम इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो।
मैं उनसे क्या कह सकती हूँ, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं लोगों से झूठ क्यों बोलूं?
जरूर नहीं कि तुम झूठ बोलो, वही बातें जो तुम्हें पता है बता दो, बाकी बातों में कह दो कि ये चीजें ये नहीं बता सकते। मेरे ख्याल में जल्दी उसको फोन कर दो।
यानी सच में मैं उनको बुलाकर इंटरव्यू दूं?
तशरीफ लाइए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह। जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज के मुबारक दिन के मौके पर इस मदरसे के कुछ हुनरमंद तालिबे इल्म आलिमे दीन का लिबास पहनने का शरफ हासिल कर रहे हैं और हमारे हाजी शहीदी साहब के मुबारक हाथों से कि खुदा उनको सलामत रखे, अपने अमामों को सर पर रखेंगे और ये इफ्तिखार हासिल करेंगे। आप सब हजरत मोहम्मद और उनकी आल पर सलावात भेजिए। اللهم صل على محمد وآل محمد। इजाजत है हाजी साहब,
शुरू कीजिए।
वाह वाह, जनाब सैयद जमाल मोहम्मदी, ये लीजिए, मुबारक हो, आइए।
इंशाअल्लाह के अपने जद्दे बुजुर्गवार के पैरों बनेंगे।
जनाब आगा शेख मुस्लिम रसूली, जनाब रसूली मुबारक हो, जाइए।
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آجاؤ جاؤ دیکھو برات علی کو ڈھونڈ پاتے ہو یا نہیں. جاؤ.
ٹھیک ہے.
جناب شیخ سعید سعادتی آئیے. مبارک ہو. بہت مبارک ہو. تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟
ابا جان تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں.
تم نے کہا تو نہیں کہ میں اوپر ہوں.
سب لوگ اماما پہن رہے ہیں, کیا تم اماما نہیں پہنو گے؟
آرام سے, یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوڑ جاؤ, جاؤ جاؤ, کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا. جاؤ. مبارک ہو بہت بہت. چاہیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے جناب شیخ علی اکبر عباسی. مبارک ہو.
آیت اللہ زندی علیہ الرحمہ فرماتے تھے, یہ لباس مزدوروں کا لباس ہے. یعنی آج سے آپ لوگ امام زمانہ کے مزدور ہیں. ایسا مزدور جو عوام کے لیے کام کرتا ہے, اس کا وقت عوام کے لیے ہے, اس کی زندگی بھی عوام کے لیے ہے. لیکن انہی عوام کا اجتماع ممبر کے نیچے طلبہ کے لیے حب نفس پیدا کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے. یہی وہ مقام ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ تزکیہ کیا ہے. یہ سمجھیں گے کہ طلبہ کو شدت سے خدا کا طالب ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ خود ایک جگہ پر پہنچیں. البتہ خدا وند عالم ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا ہے. حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سپاہی بننے کے لیے خاص تمہید کی ضرورت ہے. آپ کا طلبہ بننے کے لیے آنا خدا کی طرف سے دعوت ہے. جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ان کو بہت سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. آپ لوگوں کو روز مرہ کے معاشرتی مسائل سے باخبر رہنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. لیکن عوام اہل علم حضرات سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں. عوام طلاب اور علماء کی زندگی کی جزئیات کے بارے میں حساس اور باریک بین ہوتے ہیں. لہذا آپ کو اپنی زندگیوں کا دھیان رکھنا ہوگا. آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ خالص اور پاک رہیں, حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا ایک غلط عمل سفید زمین پر ایک काले धब्बे की मानिंद नुमाया नजर आने लगता है।
इंजा